आप सबको जॉर्जियन कैलेंडर में 2017 के नए वर्ष के पहले दिन पर बहुत बहुत अभिनंदन। वैसे तो आज ऑलवेज आप कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाते होंगे, जिसको कि आप दो दिन में या एक हफ्ते में, मैक्सिमम एक महीने के अंदर अंदर तोड़ना है। तो ये सब यूनिवर्सियल है जी, ये कोई आपका मेरा नहीं है, पूरे प्लैनेट में सबके साथ होती है, ये सब पार्ट ऑफ नेचर है हमारा। सो आज ऑलवेज वी टेक दिस टाइम टू लुक बैक एट द ईयर बिहाइंड अस एंड द ईयर अहेड विथ ग्रेट एंटिसिपेशन एज टू व्हाट विल कम, टू कैरी द लेसन्स ऑफ द पास्ट विथ अस एंड लुक कॉन्फिडेंटली फॉरवर्ड as we always do. Each day brings new challenges, and each day we meet the challenges with grit and zeal, and thus overcome them with ease. Such baat to ye hai ki koi na naya saal hota hai, na naya din hota hai, na naya maas hota hai. Time or space unlimited hai. Uska koi sima nahi hai. वो सर्वव्यापक है काल, जब संसार होता नहीं तो भी काल होता है, टाइम होता है। हमने अपनी सुविधा के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से जो दिन रात है उसको काउंटिंग करके एक सिस्टम बनाया है, कैलेंडर बनाया है, जिसे हम अपने लाइफ को ज्यादा सिस्टमेटिक वे में चला सके, हम समझ सके कि हमने इतने समय तक हमने क्या किया, इतने समय तक क्या करना है, क्या अचीव करेंगे क्या नहीं करेंगे। वैसे यकीन मानिए, इस धरती पे अगर 700 750 करोड़ लोग हैं, उनमें से 90% लोगों का कोई रियल प्लान नहीं है अपनी लाइफ के बारे में। हाँ, ये पक्का है कि कमाना है खाना है, कोई पढ़ लिख के कमाता है क्योंकि उसको ज्यादा कमाना है, कोई अनपढ़ करके कमा लेता है। दैट द ओनली सिस्टम वी हैव डेवलप्ड फॉर अस, कि मुझे क्या करना है, पढ़ना भी उसमें शामिल है, एजुकेशन भी क्या है, जिससे कि मैं क्या कमाऊं और उसको कैसे खर्च करूं। उसके अलावा लाइफ में मोस्टली 80-90% लोगों का और कोई शेड्यूल नहीं है, कमाना कैसे खर्च कैसे करना। पर लाइफ तो कमाना और खर्च करने से ही बंधा हुआ नहीं ना, लाइफ तो बहुत कुछ से जुड़ा हुआ है। हम फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हम बहुत कुछ हमारी जरूरत है, और जिसको पाने के लिए जो व्यक्ति जितना ज्यादा समय का ठीक उपयोग करता है, सही समय पर उपयोग करता है, वो उतना ज्यादा सुखी होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, जिसने बचपन में पढ़ा नहीं हो, जवानी में भोगा नहीं हो, वो बुढ़ापा में कुछ नहीं कर सकता। मतलब जिस समय जो करने का चीज है, अगर उस समय वो चीजें नहीं किया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ये टाइम जो कैलकुलेशन है, ये जरूरी होता है। कम से कम हमें किसी भी पड़ाव पर हमें मौका तो मिले सोचने के लिए कि मैंने आज तक जो किया उससे मुझे कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, कितना मैंने वेस्ट किया, बर्बाद किया, तो मैं अगला फ्यूचर प्लान बना सकूं। दुनिया के सारे जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं, कंपनियां होते हैं, कोई ऑफिसेस चलाते हैं, सब जगह कोई प्लान होता है, कोई 5 ईयर प्लान करता है, कोई 10 ईयर प्लान करता है, कोई 100 ईयर प्लान करता है, कोई 1 ईयर प्लान करता है, किसी की शॉर्ट टर्म प्लान है कि एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा, एक महीने में क्या करूंगा। बहुत जरूरी है, और समय की ये जो विभाजन है ये हमें हेल्प करता है। इस नाते हमने महीनों, हफ्तों, दिन वगैरह बनाया है। सच बात तो है कि हर रोज एक नया दिन होता है, हर रोज। नेचुरली नेचर के हिसाब से कोई न्यू ईयर न्यू डे कुछ होता नहीं है। आज भी जिनको गिरना है वो गिरेंगे, कल भी जिनको गिरना था वो गिरे थे, जिनको आज बीमार पड़ना है वो पड़ेंगे, जिनको कल बीमार पड़ना था वो पड़े हैं, जिनको आज कुछ मिलना है आज मिलेगा, जिनको कल मिलना था वो कल भी मिला होगा। ऐसा नहीं कि न्यू ईयर में कुछ खास होगा, आप खास प्लान करते हैं, नेचर में ऐसा कुछ प्लान नहीं है। जैसे रोज का दिन होता है वैसे ही दिन होता है। इवन आपके बॉडी में भी कोई नेचर में चेंज थोड़े आता है कि भाई यार न्यू ईयर है तो रोज मैं 8 बजे उठता हूं तो आज मुझे 5 बजे नींद खुल गई क्योंकि न्यू ईयर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा 9-10 बजे तक सोते रहते हैं क्योंकि रात को कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं, सभी नहीं कुछ लोग तो आपके बॉडी के नेचर में भी कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि न्यू ईयर है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो गरीब हैं, उनके लिए तो कोई मतलब नहीं, उनको पूछो आज कौन, उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि आज डे क्या है, तारीख क्या है। और मत सोचिए कि ये कोई 1, 2, 10, 100, 1000, 1,000,000 लोग ऐसे हैं, नहीं। इस प्लैनेट में जितना भी पॉपुलेशन है मोर देन 50% को पता ही नहीं होता है कि आपका क्या फेस्टिवल है, कौन सा न्यू ईयर है, कब दिन आता है कब जाता है। तो एक दिन काम ना करे खाने के भूखा मर जाएं, भीख ना मांगे तो खाना ना मिले, उनके लिए क्या दिन क्या रात क्या। पर तब भी जो जानते हैं मनाते हैं वो एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि सोचें समझें हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। इट हेल्प्स ए लॉट। इसलिए ये डेट महत्वपूर्ण नहीं है कि January 1, 2017, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। जिस दिन आपके लाइफ में आप कुछ चेंज लाते हैं, कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कुछ बदलाव आपके लाइफ में आया, उस दिन आपके लिए एक नया दिन है। दैट्स योर न्यू डे, न्यू ईयर, न्यू मंथ, न्यू क्वार्टर, जो भी आपका। प्रैक्टिकली हम सबके लाइफ में बहुत सारे नए दिन या नए साल आते हैं। जिस दिन हमारे लाइफ में कुछ चेंज आता है, कोई ट्विस्ट आता है, कोई बदलाव आता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कोई चेंज आता है वो हमारे लिए नया दिन है, नया वर्ष है। जिस दिन आप पैदा हुए वो भी आपके लिए नया ही दिन है, नया वर्ष ही है, ध्यान रखिएगा। अब उसको सेलिब्रेट करते हैं और हर दिन सुबह जब आप नींद से उठते हैं कोई पता नहीं कि दिन कैसा जाएगा, हर दिन एक नया दिन होता है, वो कुछ नई पॉसिबिलिटी, नई संभावनाएं लेकर के आती हैं। अगेन वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर समझदार व्यक्ति हो उसको सही ढंग से यूज करता है वो बहुत अच्छी चीजें पा सकता है, गलत तरीके से यूज करता है तो गलत रिजल्ट होता है। इसीलिए रोज सुबह अपने आप में एक यूनिक डे होता है, हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं उससे डिफाइन होता है कि मेरा जीवन कैसा होगा। तो जनवरी मंथ है, का जो नाम पड़ा है रोमन माइथोलॉजी के गॉड जो जैनस कहते हैं, और सिंबलिकली उसकी दो मुंह है, एक फ्रंट को है, एक रियर फेस है, एक पियर फेस है, एक सामने की एक पीछे की। शायद जिसने भी ये नाम दिया होगा पॉलिटिकल या रॉयल रीजन कुछ भी रहा होगा, कुछ सिंबलिक रीजन ढूंढा होगा इस मंथ के नाम देने के लिए, क्योंकि जनरली जो अंग्रेजी के मंथ के नाम है या तो रोमन और ग्रीक कल्चर में कोई राजा के किसी बड़े डिक्टेटर के नाम के हिसाब से मंथ के नाम पढ़ते हैं। तो किसी ने सोचा होगा जब वो जैनस के नाम से जनवरी बनाया होगा कि वर्ष यहां आरंभ होता है, तो व्यक्ति को ये मौका मिलता है, ये जो न्यू ईयर है ये मौका देता है कि हम पीछे मुड़ के देखें, हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, उसको आगे रिन्यू करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है या कंटिन्यू रखने की जरूरत है, क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये दोनों मुंह का प्रतीक है। संस्कृत में इसको हम कहते हैं सिंहावलोकन। सिंह कहते हैं शेर को, लायन को। जब वो दौड़ता है उसकी एक नेचर है, जब वो दौड़ता है थोड़ी देर दौड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, इसी को कहते हैं सिंह की तरह अवलोकन करना, मतलब देखना, मुड़ के देखना, अपनी पास्ट को देखना, अपने बैक को देखना, मैं कहां तक दौड़ के आया, क्या छोड़कर आया, क्या लेकर आया। कभी कभी लाइफ में हम अननेसेसरी बहुत सारे बोझ ढोते रहते हैं जिनको ढोने का कोई मतलब नहीं है लाइफ में, लाइफ ज्यादा मिजरेबल होता है, पर आदत पड़ चुकी है, हम बोझों के साथ चलते हैं। बहुत सारे अननेसेसरी अटैचमेंट्स, अननेसेसरी मेमोरीज, उसको लेकर हम रोज जिंदा रहते हैं, और जो हमें स्ट्रेस में डालता है, टेंशन देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ लोगों की दूसरे तरह की आदत है, वो किसी भी तरह की कोई बोझ उठाते ही नहीं है, बिल्कुल खाली चल पड़ते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नहीं होता है। ज्यादातर लोग अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढोते घूमते रहते हैं कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, मेरे बिना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अभी भी नहीं चलेगी, बच्चे नहीं चलेंगे, घर नहीं चलेगा, पड़ोसी नहीं चलेगा, मंदिर नहीं चलेगा, सोसाइटी नहीं चलेगा, देश नहीं, अननेसेसरी झूठ का रिस्पॉन्स लेते हैं। हमने एक कहानी सुनी थी, एक छोटे से गांव का आदमी पहली बार गांव से बाहर निकला शहर जाने के लिए, और उसको ट्रेन पकड़नी थी, तो वो ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में गया बैठने के लिए। उसके पास एक बोझा था, पोटली था, कपड़ा था, उसके अंदर काफी सारे सामान थे। गरीब अनपढ़ व्यक्ति पहली बार ट्रेन में बैठा, और वो ट्रेन में बैठ करके बोझे को अपने सर पे लेकर के सीट पर बैठा रहा। लोगों ने पूछा कि ये सर पे टोकरी लेकर क्यों बैठते हो, इसको नीचे रख दो, जगह काफी पड़ा हुआ है, ऊपर भी जगह है, नीचे है, रख दो। बेचारा भोला था, बोला नहीं, मैंने टिकट अपने लिए लिया है ना, तो गाड़ी मुझे ही ढोएगी, मेरे सामान को क्यों ढोएं, मुझे ही ढोना पड़ेगा। हमारे में से ज्यादातर लोगों की यही स्थिति है। हम सोचते बोझा हम न ढोए तो बोझा ढोया ही नहीं जाएगा, गाड़ी को क्या फर्क पड़ता है, तुम चढ़ जाओ, तुम्हारे बोझ चढ़ जाए, सबको ढो लेगा। समझ आए तब ना कि हर वक्त बोझा ढो करके भागने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रिलैक्स्ड हो जाओ, कभी कभी अननेसेसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा लो, अपने अहम को ज्यादा भाव मत दो, अपनी ईगो को ज्यादा भाव मत दो, कभी कभी कंप्रोमाइज करने दो, हो गया, जिसने क्या बोला क्या फर्क पड़ता है, लाइफ को आगे बढ़ने दो, बिल्कुल ट्रेन की सवारी की तरह। पर हम नहीं करते, और कुछ लोग तो पूरी तरह बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के लाइफ जी लेते हैं, खाओ पियो नाचो गाओ और कुछ नहीं बचा। तो ऐसे दिन कभी कभी अगर हम सीरियसली सोचे तो हमें मौका देता है ये सोचने के लिए कि मैंने क्या किया, क्या ढोया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिन चीजों को ढो रहा हूं उसमें से बहुत सारी चीजें मैं नहीं ढोता तो भी चलता, और कोई ढो लेता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुझे सचमुच ढोना चाहिए ऐसे बहुत सारी चीजों को मैं दूर छोड़ आया हूं, जो सचमुच मेरी ड्यूटी थी उसको मैंने निभा नहीं पाया। कभी कभी बच्चों के पालने के चक्कर में मां बाप को हम कोसों दूर छोड़ा जाते हैं, सोचते हैं यही हमारी पूरी जिम्मेदारी है, वो कुछ नहीं, तो ये सब एनालाइज करने का टाइम होता है नए साल जब आपके जीवन में आता है. हु वी आर, वेयर वी आर, व्हाट वी वैल्यू, व्हाट वी लव हैव बीन शेप्ड बाय द पास्ट, बाय आवर ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ, इवन व्हाट वी बिलीव अबाउट आवर सेल्फ और गॉड और सोसाइटी और फैमिली और एनीवन और द नेचर ऑफ रियलिटी हैज बीन शेप्ड बाय द बाय हाउ वी हैव एक्सपीरियंस्ड द लाइफ. तो जो कुछ आपका जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपका सोच, आपका डिस्क्रिमिनेटिव पावर सब इंक्लूडेड है. आपकी पर्सनैलिटी जैसा है वो सब आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से चलता है. आप एक चीज के बारे में ऐसा जो सोचते हो वो इसीलिए सोचते हो कि आप उसी तरह के चीजों को एक्सपीरियंस में लिए हो. अब किसी पंजाबी को आप सांबर बड़ा खिलाओ, उसको लगेगा क्या खाना है, ये कोई खाना है, छोले भटूरे होते तो मजा आ जाता. तो किसी दक्षिण भारत के केरले तमिल आदमी को मक्के की बड़े प्यार से पंजाबी के घर पहुंचा, मक्के की रोटी सरसों का साग दिया, वो तो कहेगा ये जंगली जानवरों का खाना है, कोई खाना है, थोड़ा रसम दे देता, सांबर दे देता है, कोई इमली का चावल देता है, कोई मतलब होता है. ये क्या है, जैसा हम पले बड़े हैं, हम इवन हमारे खाने के बारे में भी हमारा वैसे ही व्यू पॉइंट बनते हैं. हमने दूसरे चीजों को कभी देखा नहीं, खाया नहीं, चखा नहीं, कोई टेस्ट डेवलप नहीं किया, तो हम उस कुएं के अंदर रह गए, बस यही द बेस्ट. इसी तरह हमारे वैल्यूज भी हैं. कभी कभी वैल्यूज के नाम पर हजारों ऐसे असामाजिक चीजें भी जो कि सोशियली एथिकली खराब है, उसको भी हम वैल्यू मानकर ढोते रहते हैं और बच्चों को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं. ये सब चीजें हमारे पास्ट से, मैं एक गंदी से गंदी चीजों को अपना वैल्यू मानता हूं या अच्छी चीजों को वैल्यू मानता हूं, इसीलिए कि इसी तरह के मेरे पास्ट रहा है. और एवरी न्यू डे इज गोइंग टू बिकम ए पास्ट डे. आप उसको कैसा उस दिन आप एक्सपीरियंस करते, क्या चीजें करते, क्या चीज भोगते, वो सब आपका पास्ट हो जाएगा और वो आपके फ्यूचर माइंड को कंट्रोल करने में डिसाइसिव रोल अदा करेगा. इसीलिए बी केयरफुल जब आप जो भी चीजें आप करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अगर उसमें आपकी केयरफुलनेस रहता है तो अच्छा है. इसीलिए हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इवन बच्चे और मां बाप भी अलग अलग होते हैं. मां बाप के दो जुड़वां भाई या जुड़वां बहन भी अलग अलग माइंडसेट के होते हैं. उसका कारण है कि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग टाइप के वातावरणों में पले बढ़े हैं, इसीलिए अलग होता है. और इसीलिए सबकी स्टोरी अलग है. सब शादी करते हैं, जो कहे ना जो खाए वो पछता है, जो न खाया वो भी पछता है, शादी के लड्डू. पर सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस है. सब कहेंगे जी शादी से बड़े दुखी हुए, पर सबका दुख अलग अलग टाइप का है. सुख नहीं बताते हैं कि शादी के क्या सुख है, दुख गिनती बताते हैं. पुरुष लोग थोड़ा ज्यादा बताते हैं. तो पर हर एक की स्टोरी अलग है. सबकी फैमिली है, सबके मां बाप है, सबके बच्चे हैं, सब नौकरी करते हैं, सब पैसा कमाते हैं, सब, पर सबकी स्टोरी अलग अलग होगी. क्यों? द वे वी एक्सपीरियंस इट, वी सी इट, इट मेक्स इट डिफरेंट इन आवर लाइफ. चीज वही होता है, पर उसको किस ढंग से हम लेते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी की शेप बनता है. इसलिए जीवन में ऐसा नहीं कि हम कोई प्योर हैं, कोई गलतियां नहीं करते, पिछले साल में भी हमने बहुत गलतियां की होगी, अच्छाइयां की होगी, कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे, कुछ मिस्टेक किया होगा, ये पार्ट ऑफ आवर नेचर है। एट आवर सेंटर वी आर होल, पूर्ण मदह पूर्णमिदम, सब कुछ अपने आप में पूर्ण है, होल है, पर उसके बावजूद भी हमारी लाइफ जो है इट्स ए फ्रजाइल, इसमें बहुत जल्दी टूटने की संभावना रहती है, फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली, गलत करने का पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हम ईश्वर नहीं है, अल्पज्ञ है हमारी सोच, क्योंकि मैंने कहा उसी पास्ट से हमारी हमारी पर्सनालिटी शेप लिया है, और वो जो एक्सपीरियंस पास्ट में हमने किया जरूरी नहीं कि वो सारे सही हो, इसलिए कुछ मिस्टेक्स भी हम करते हैं, और मिस्टेक से हम अगर हम उससे सीखते हैं, कुछ सुधारने को मौका देते हैं अपने आप को, तो फिर वो हमारे लाइफ की बड़ी पूंजी बन जाती है। अगर हम कुछ सीखते नहीं है, कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं, फिर वो बोझ बन जाता है। So we look back to see the rough places so that they will cannot continue to lead us down the same wrong streets they have in the past. अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ इस साल, या मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया, इवन मेरे साथ ही मैंने कुछ बुरा किया, ज्यादातर हम अपने साथ ही बुरा करते हैं, दूसरों के ध्यान रखिएगा देवियों सज्जनों, आप कितने अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, आप दूसरों के लिए अच्छा भला अगर 1% करते होंगे नहीं करते होंगे, पर जो कुछ करते हैं आप अपने लिए करते हैं, मोस्ट ऑफ पीपुल अपने लिए बहुत बुरा करते हैं। तो जो अगर कोई ऐसी रफ एक्सपीरियंस है, हम संकल्प लें, रेजुलेशन बनाएं कि वो रिपीट ना हो। सो वी आर ऑफ दिस अर्थ इट द डिवाइन लाइफ विद इन अस, हम पार्थिव हैं मैटेरियल हैं, पर हमारे अंदर एक डिविनिटी है, दोनों को मिलाएं, दोनों के लिए कुछ करें। सो वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फ्रेजिलिटी एंड इम्परफेक्शन विथ कंपैशन, क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो अपने आप को सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि वो कितना भी दयावान हो या निर्दयी हो वो अपने प्रति कम दया दिखाता है, और यही उसकी सारे दुखों का जड़ है। अपने प्रति दया बहुत जरूरी है। लाइफ में मेरे से कुछ अच्छा हुआ गलत हुआ, मेरे द्वारा कुछ गलत हुआ अच्छा हुआ, उसको छोड़ना माफ करना, खुद को माफ करना भी आना चाहिए लोगों को। जो खुद को नहीं माफ कर सकता है वो किसी को भी नहीं माफ कर सकता है, और माफ करे भी वो पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने के लिए करता होगा। इसीलिए बड़ी जरूरी है कि हम अपने लिए तो कंपैशनेट बने, एंड वी लर्न टू फाइंड पीस विद दोज रफ प्लेसेस। इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। आप नरक में जाकर भी आनंद ले सकते हैं, स्वर्ग में भी जाकर दुखी हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। आप अगर गुस्सा ईर्षा जेलेसी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में भरे हैं, स्वर्ग में भी जाएंगे तो आपको ईर्षा होगी। तो आपको क्या लगता है जो धनी लोग हैं वो सुखी दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी अपनी समस्या है। करोड़ों लोग धन के लिए तरसते हैं, छोटी छोटी सुख वो कर नहीं पाते हैं। करोड़ों लोगों के पास बहुत पैसा है तो भी सुखी नहीं है। कारण बीमारी दोनों की गरीब और धनी में एक ही है, अशिक्षित और शिक्षित में एक ही। वो क्या चीज है? ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, ये सब स्वर्ग और नरक के कारण बना देता है। तो इसीलिए ये हमें सोचने का समय है। मार्किंग द न्यू ईयर, ईच ईयर कॉल्स अस टू बी माइंडफुल ऑफ आवर लाइव्स एंड हाउ वी आर लिविंग। Let us take this opportunity this morning not to let the new year slip away, without remembering. Let this new year begin by taking a moment to plant seeds of hope for the future. And so, as we begin a new year, we do so with confidence. This year, like everyone, will bring obstacles and opportunities. Ye mat sochiye ki aashirwad mil gaya, pura saal achcha chalega. Nahin. Ye Ishwar ki srishti mein koi nahi andar aa sakta hai. जीवन में अप्स एंड डाउन्स होना ही होना है, अच्छा और बुरा होना ही होना है, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, पूरी तरह कोई भी नहीं मिटा सकता। अगर हम मेंटली प्रिपेयर ना हो कि कोई हमारे साथ प्रॉब्लम हो उसको सहने के, तो लाइफ, हम अपने लाइफ को मिजरेबल बना देते हैं। गुड सेइंग, इट्स चैलेंज, पर लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, समझदार लोग उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं, brings us together, and each accomplishment makes us stronger. We can indeed achieve anything that we put our mind to. चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस न्यू ईयर के ओकेजन पर। संसार में सबसे सुंदर प्रार्थना, इससे अच्छा प्रार्थना आप क्या कर सकते हैं कि संसार में सब सुखी रहें, कोई भी निरोग ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, सब अच्छी चीजें जाने। मिलकर सब गाएंगे, बोलिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।